मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 15 जनवरी 2019 है और आज के इस afis.com के लाइव मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज से प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में कुंभ के मेले की शुरुआत हो गई है। कुंभ का मेला यानी कि आस्था का स्थल, एक अद्भुत मेला। अद्भुत मेला इस मायने में कि कड़कड़ाती हुई ठंड में भी आप देखिए हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग यहां आएंगे और इस ठंडी में भी ठंडे पानी में डुबकी लगाकर और कितने अधिक उल्लास और आध्यात्मिक शांति का अनुभव करेंगे। दोस्तों, यह है क्या, वो कौन सी ताकत है जो उन्हें कुंभ मेले में लेकर आ रही है? और उसमें आप पाएंगे कि धनी गरीब, हर जाति के, धर्म के, पता नहीं किस क्षेत्र के लोग वहां इकट्ठे होते हैं। जब मैं दिल्ली गया था और मैं देख रहा था कि 11 तारीख को जब हम लोगों ने पुस्तक मेले में मिलने की बात कही थी तो कहां कहां से स्टूडेंट आए हुए थे। नो डाउट कि जो दिल्ली में ही रह रहे हैं उनके लिए आना अपेक्षाकृत आसान था, लेकिन मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि दो लोग ललितपुर से आए हुए थे जिनका सिविल सर्विस के प्रिपरेशन से कोई लेना देना नहीं था, जो केवल डेली ऑडियो लेक्चर और लाइफ मैनेजमेंट सुनते थे और उन दोनों प्रोग्राम्स को अपने लिए इतना उपयोगी पाया कि उनका कहना था कि उनके जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव आया है। जालंधर से लोग आए थे, राजस्थान के झालावाड़ से रात भर का सफर करके स्टूडेंट आए हुए थे। मित्रों, सोच रहे होंगे कि कुंभ मेले का इससे क्या संबंध है? है संबंध, छोटा सा ही संबंध है लेकिन है, और वो संबंध है मूलभूत आस्था का, कि जहां आपकी आस्था होती है आप देखिए कि वहां आप किस तरीके से सारी बाधाओं को दूर करके पहुंच जाते हैं। यानी कि आस्था की अपनी शक्ति इतनी विशाल होती है, उसकी मानसिक ऊर्जा इतनी विराट होती है, इतनी गहरी होती है, इतनी दीप्ति से पूर्ण होती है कि उसके सामने सारी चीजें छोटी पड़ जाती हैं। मैं जानता हूं कि जो लोग चाहे कुंभ मेले में जा रहे हों, आगे भी जाएंगे, जो मेरे पास उस दिन आए थे, आप ये मत समझिएगा कि मैं कुंभ मेले की तुलना कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं, कोई तुलना ही नहीं है, तुलना करने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन जो दोनों को खींच कर ला रही है, दोनों स्थानों पर, मैं उसे यहां आपके सामने जीवंत और प्रत्यक्ष रूप में, यानी कि जब प्रत्यक्ष अनुभव होता है तो उस पर विश्वास करना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए ये बात कह रहा हूं, इसलिए मैं दोनों को एक साथ लेकर चल रहा हूं। तो मित्रों, आपने पाया होगा कि जब आस्था होती है तो कैसे बाकी सारी चीजें बिल्कुल छोटी सी होती हो जाती हैं। ये आप ही हैं, याद रखिए, कि जो आस्था का संचार करते हैं। आस्था का संचार करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। बशीर बद्र जी ने एक बहुत खूबसूरत लाइन कही थी, सिर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। पत्थर ही तो है, शिवलिंग क्या है, मूर्तियां क्या है, वही मूर्तियां हैं दुकानों में बिकती रहती हैं, लेकिन वहां हम उन्हें प्रणाम नहीं करते, वहां हम खरीद कर लाते हैं और जब अपने घर ला करके उनकी स्थापना करते हैं तो फिर देखिए कि कैसे वह मूर्ति हमारे आस्था का संचार करने के बाद हमारे लिए देवत्व आभा को प्रकीर्णित करने वाली बन जाती है, उसमें हमें देवता दिखाई देने लगता है। सिर झुकाओगे तो पत्थर देवता बन जाएगा। तो ये जो सिर झुकाना है, ये आप हम सबका ही सिर झुकाना है, और जब हम सिर झुकाते हैं इसका मतलब है कि उसके प्रति, जिसके प्रति हम सिर झुका रहे हैं, अपनी श्रद्धा भाव का संचार कर देते हैं, उसके प्रति हम अपनी आस्था का प्रदर्शन करते हैं। और जैसे ही हम आस्था का प्रदर्शन करते हैं उसका अर्थ हमारे लिए बिल्कुल बदल जाता है, बिल्कुल भी बदल जाता है। दोस्तों, आप दुकान से लड्डू खरीद के खाते हैं, पेड़े खरीद के खाते हैं। मैंने देखा है, मंदिर है, मंदिर के बाहर एक दुकान है, उस दुकान में दो तरह के लोग जा रहे हैं, एक मिठाई खरीद कर घर ले जाने के लिए जा रहे हैं, मिठाई खरीदते हैं और घर ले जाते हैं और मिठाई खाते हैं। दूसरे वे लोग भी हैं जो वहीं से खरीदते तो मिठाई ही है लेकिन ये नहीं कहते कि मिठाई दे दो, कहते हैं कि प्रसाद दे दो। वो उस प्रसाद को लेकर के मंदिर में जाते हैं, वहां अर्पित करते हैं और फिर निकलकर कभी नहीं कहते कि वो पेड़ा बांट रहे हैं या लड्डू बांट रहे हैं। दूसरों को कहते हैं कि प्रसाद ले लो, और आप देखेंगे कि मिठाई खाने का तरीका और प्रसाद को खाने का तरीका बिल्कुल अलग अलग होता है। आप मिठाई को प्लेट में रख करके उसे पकड़ा देंगे, जमीन में उसके टेबल पर रख देंगे, वो एक हाथ से ले लेगा, लेकिन जब आप प्रसाद देते हैं हाथ से ही दें, उसकी हथेली पर ही रखें, आप प्लेट में नहीं देंगे। इसके बावजूद देखिए कि कितने श्रद्धा के साथ वो दोनों हाथ बढ़ाकर आपसे प्रसाद लेता है और फिर उस प्रसाद को अपने माथे से लगा करके ही वह उसका उपभोग करता है। उपभोग करता है, याद रखिए वह उसको खाता नहीं है, प्रसाद का उपभोग किया जाता है, क्योंकि भोग तो ईश्वर ने किया है। जो मूल रूप से जो उसका लाभ लिया है या उसका स्वाद लिया है वो ईश्वर ने लिया है, हम तो उसके बाद के भोग का उपभोग कर रहे हैं, वो उसके बाद की सीढ़ी है। और आप देखिए कि ये सारा कमाल केवल एक ही तत्व से हुआ है, एक ही भावना के कारण हुआ है, और वह है श्रद्धा की भावना। मित्रों, अभी कुंभ मेले में आपको श्रद्धा की भावना का वह जबरदस्त उबाल दिखाई देगा। लेकिन मेरी जो चिंता है कह लीजिए, या जो मैं आप सबसे अपनी बात या अपने विचार जो शेयर करना चाह रहा हूं फ्रेंड्स, वह यह कि ये जो हमारी श्रद्धा की भावना होती है, इसे हम कितने लंबे समय तक बनाए रख पाते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। ज्यादातर जब श्रद्धा हमारी केवल इमोशंस तक सीमित रह जाती है तो वह एक उफान सा बन जाता है, वह एक उबाल सा बन जाता है। दूध आप चढ़ा देते हैं, दूध में उफान आया, मलाई सारी की सारी बाहर गिर गई, इसके बाद दूध उबल रहा है, खौल रहा है, खौल रहा है, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो मावा में कन्वर्ट हो गया है, और अगर आप उसे आगे भी उबलता और खौलता हुआ रखेंगे तो वह कुछ और बन जाएगा, जलकर खत्म हो जाएगा। जब हमारी श्रद्धा इस प्रकार से केवल इमोशंस तक सीमित रहती है तो वो एक प्रकार यूं कह लीजिए कि एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाती, वह उस ऊर्जा का रूप नहीं ले पाती जो सच में हमारे जीवन में चमत्कार कर सकती है, और इन्हीं से चमत्कार होते भी हैं। देखिए, पूजा पाठ, धर्म, तीर्थ यात्रा, ग्रंथ वाचन, भजन, कीर्तन, इन सब का जो पर्पज है वो केवल हमारे आंतरिक जगत में एक सकारात्मक, एक पवित्र परिवर्तन लाना होता है, एक एहसास कराना होता है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, हम किसी बहुत अच्छे को याद कर रहे हैं, फिर चाहे वो प्रभु हो, अल्लाह हो, जीसस हो, कोई भी हो, हम उन्हें याद कर रहे हैं, और जिन्हें हम याद कर रहे हैं वो बहुत बड़ी शक्ति है, हम उन्हीं की संतान है, या प्रत्यक्ष रूप से कह लीजिए कि हम अपने पिता को याद कर रहे हैं, और यही हम पितृ पक्ष में अपने करते हैं, हम अपने पिता, पितामह, माता, दादी, इन सबको याद करते हैं, क्योंकि हम ये मान करके चलते हैं कि हम आज जो कुछ भी हैं इस धरती पर, हमारा जो अस्तित्व है वह केवल उन्हीं के कारण है, और जो हमारे पितृ को जो हम याद करते हैं उसे ही यहां आप श्रद्धा के रूप में, चाहे ईश्वर को याद करना कह लीजिए, चाहे गुरु को याद करना कह लीजिए, चाहे मंदिर में जाना कह लीजिए, या फिर प्रयागराज में जाकर वहां संगम पर डुबकी लगाना कह लीजिए, चीजें सभी एक ही हैं, क्योंकि इसके परिणाम से जो हमारे अंदर भावना जागृत होती है वह श्रद्धा की ही होती है, और यदि श्रद्धा की भावना जागृत नहीं होती तो देखिए क्या हो जाता है, वो पर्यटन बन जाता है। आप देखिए कि जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, जो भगवान के स्थल हैं, वहां हम कभी भी नहीं कहते कि पर्यटन के लिए जा रहे हैं, हम कहते हैं कि हम तीर्थ करने जा रहे हैं, तीर्थ करने जा रहे हैं, यानी कि एक बहुत पवित्र उद्देश्य के साथ जा रहे हैं। जब हम कहते हैं कि हम पर्यटन करने जा रहे हैं तो यह है कि मौज मस्ती, समय काटने, आनंद मनाने के लिए जा रहे हैं, दोनों में बहुत फर्क है। जब हम तीर्थ स्थान जाते हैं तो वह हमारे आंतरिक आनंद का केंद्र बनता है, और जब हम पर्यटन के लिए जाते हैं तो हमारे बाह्य आनंद का केंद्र बनता है, और दोनों में बहुत फर्क है। बाहर और अंदर में मित्रों बहुत फर्क होता है, रात दिन का फर्क होता है। तो मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूं दोस्तों, कुल मिलाकर यह कि आप सब मेरे पास आए, आप में से पूरा का पूरा हमारा देश अभी कुंभ मेले में जाएगा, ये उनकी श्रद्धा का प्रमाण है। और सच बात यह है कि वो इस बात का भी प्रमाण है कि वो कुछ अच्छा बनना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा जानना चाहते हैं, अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। अपने पाप को धोना वही तो है गलतियों को सुधारना, वो चाहते हैं। अब ये चाहते कंटिन्यू करें कैसे, बस इसी पर विचार करने की जरूरत है कि अभी की जो हमारी ऊर्जा किसी भी बाधा को पार करने को तैयार है। कल्पना करके देखिए कि अगर आप उस ऊर्जा को प्रिजर्व कर सके, रख सके, बचा कर रख सके और कंटिन्यू कर सके, तो सोच करके देखिए कि आप हम सब की शक्ति में कितने गुना अधिक बढ़ोतरी हो सकती है। और जब हमारी शक्ति बढ़ जाएगी तो हमारी सफलताएं बढ़ जाएंगी। छोटी छोटी जो बाधाएं हैं, एक तरह से यूं कह लीजिए कि वो शून्य जैसी हो जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। तो मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही कि किस तरीके से हम कोशिश करें कि अपने आस्था को अपनी ऊर्जा में तब्दील कर सकें। दोस्तों, अब इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।